राजेंद्र मित्रम
राजेंद्र
जो राज्यपाल
राजेंद्र जी का मित्र
था वो हो गया राजेंद्र रचना की बहुत ही सरस बोधगम्य भी है, इसको बड़े स्पर्श से ग्राह्या की जा सकता है। उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों को व्यक्त किया है, साथ साथ में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों पर संक्षेप में विवेचन भी किया है। रूप गोस्वामी के पहले किसी ने भी कोई मंजरी शब्द की कल्पना नहीं कर सकता था, फिर रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में विशेष रूप नार्तिक चरण चिराग इस श्लोक में उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सखियों का भेद इतना प्रकार का होता है, सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी इत्यादि जो भेद होता है कौन जानता था। इस विषय महाप्रभु की कृपा और प्रेरणा से रूप गोस्वामी ने इन सब चीजों को दिखलाया। विशेष करके इन्होंने बतलाया उपपत्ति भाव की पहले निंदा होती थी सर्वत्र, किंतु रूप गोस्वामी ने अपने शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं, ये सर्वोच्च रस है, इसे पढ़ करके और कोई चीज नहीं है। इस तरह से इन्होंने श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट के ऊपर में अच्छा अभिव्यक्ति करके रूप गोस्वामी के चरणों में इन्होंने पुष्पांजलि दी। इसी की कड़ी में हमारे यहाँ के प्रसिद्ध श्री राधारमण विग्रह के गोस्वामी श्री श्री कार्तिक गोस्वामी भागवत के अच्छे वक्ता हैं, ये कुछ रूप गोस्वामी के वैशिष्ट के ऊपर में प्रकाश डालेंगे, उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान। और उनकी बेणी की तुलना तुमने सर्पणी से कर दी, ओ ये तो उचित नहीं हुआ। भ्राता जी इसको सुधार कर दीजिए।
सुधार
अच्छा कर दूंगा। ये कहकर के चिंता करने लगे, किंतु किंतु कुछ भी नहीं आया। अभी क्या वहां से चले, अब निकल ही रहे थे कि राधा कुंड के तट पर एक अदंप का वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक झूला लग रहा और गांव की किशोरियां, बड़ी बड़ी सुंदरी लड़कियां किशोरी, एक सखी को बीच में बैठा करके झूला रही। सनातन को सामने देखते ही देखा, अरे उसकी बेणी तो के ऊपर में सिर से एक सर्पणी इस प्रकार से कर रही है, अभी काट देगा। अरे लाली 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 लाली, देखो देखो सांप काट देगा, नागनी दस देगी। जब ही कुछ निकट में पहुंचे, कदम्ब का वृक्ष तो है किंतु झूला नहीं, सखियां नहीं, कुछ भी नहीं। ओ, क्या हो गया? ओ, रूप की बाणी को सत्य बनाने के लिए ये झूले पर झूल करके उनकी बेणी की उपमा को सत्य दिखलाया। धन्य है रूप जो श्रीमती जी उसके बात को सच बनाने के लिए इस प्रकार से आप ऐसी ऐसी श्रीमती राधिका जी की रूप गोस्वामी के ऊपर में बहुत ही कृपा है। तब गोस्वामी जी ने एक बात कहा, उनका भौतिक शरीर शांत हो गया। भला रूप गोस्वामी का कोई भौतिक शरीर हो सकता है? कदापि नहीं। भगवान और उनके ऐसे परिकरों का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता है, उनका चिन्मय स्वरूप होता है और कृपा करके जगत के लोगों के लिए आविर्भूत होता है वो उनका वह शरीर और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। अब इसी की कड़ी में हमारे संप्रदाय के मध्व श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र और रूप की सभा में श्रीमद् भागवत के मधुर वक्ता, जिसको सुन करके सभी मुग्ध हो जाते थे, श्रोताओं के आंखों से आंसुओं की धारा अष्ट सात्विक ये सब भाव प्रकटित होते थे। और रूप गोस्वामी सुन करके बैठे हैं, लोगों ने कहा अरे ये बैठे हुए हैं, किसी ने हाथ यहां लगाया तो देखा वो जल गया उनके गर्म श्वास। और तो श्रोता लोग एक छोटे से तालाब में मछली के समान है, जब मछली इधर उधर करती है तो पानी गदला हो जाता है, किंतु रूप गोस्वामी का हृदय कैसा है? अगाध समुद्र के समान, उनके भावों को नहीं समझा। वो भी गदगद हो जाते थे जिस श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भागवत के स्वर से और प्रवचन से। उन्हीं की परंपरा में आज हमारे श्री अच्युत भट्ट जी अभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूँ, बड़े विद्वान आदमी हैं, रसिक हैं, तत्वज्ञ भी हैं, इसलिए इनसे निवेदन करता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु पर श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट के ऊपर में कुछ प्रकाश डालकर उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें।
हरे कृष्ण, मैं समस्त सत्तापति से अनुरोध करता हूँ कि मैं अपना सिर धूम कम करके रखें, मैं समस्त से मेरे बैठा सिद्ध करता है। हम लेते हैं और लेते हैं सुविधाओं के ऊपर से धूम के सदर्वाइज से इस सर्वे
और
प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीपप्रचूपसूनच्छविं क्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरीत्युच्चैर्वदन्तं नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचैः सिञ्चन्तु मुरीतलं दायद्भिर्निजपार्षदैपरिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। आरुदानस्त्रणं दन्तैदं याचे पुनः पुनः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुतु मंद मते दयां दरा। तुलसी राधा गोविंद देव की, श्री रूप गोस्वामी पाद की। प्रातस्मरणीय वंदनीय चरण श्रीमद् महाराज जी जिनके चरणारविंद में विराजमान होकर के मैंने शिक्षा ग्रहण की, श्री रूप गोस्वामी पाद के काव्य साहित्य के ऊपर शोध प्रबंध जिनके निर्देशन में मैंने प्रस्तुत किया आगरा विश्वविद्यालय में आज से बहुत साल पहले, आदरणीय डॉक्टर चतुर्वेदी जी, देश के निवार्य आदरणीय श्री गोस्वामी जी, परम पूज्य वंदनीय श्री भक्त सर्वस्व गोविंद जी महाराज, यहाँ समुपस्थित सभी भक्तवृंद, वैष्णव मंडली, मातृमंडली, सबके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। रूप सनातन मठ और श्री महाराज जी के साथ में हम लोगों के ऐसे संबंध हैं उनकी कृपा के कारण कि यहाँ आकर के ये नहीं लगता है कि कहीं बाहर आए। हम बिल्कुल पड़ोसी हैं और यहाँ की कोई भी गतिविधि होती है वो ठीक मेरे ऊपर वाला जो कमरा है वहाँ पर सुनाई देती है। हम तो एक तरह से एक ही परिवार में जुड़े हुए हैं। वंदनीय है यह मठ और इस मठ के प्रेरक अधिष्ठाता हमारे श्री महाराज जी, जिन्होंने एक ऐसा विद्वत समुदाय, साधक समुदाय उपस्थित किया, भले वो आया हो किसी भी संस्कारों को लेकर के, बड़ा तार्किक संस्कार उसके रहे होंगे, लॉजिक के आधार पर चलने वाला वो वर्ग रहा होगा, कहीं भौतिकता में जुड़ा हुआ वर्ग भी रहा होगा, सीधे सीधे किसी बात को भावुक होकर के स्वीकार करना शायद उसकी प्रवृत्ति नहीं रही होगी, परंतु ऐसे देशी विदेशी बौद्धिक वर्ग को भी और उपयोगितावाद में जो डूबा हुआ वर्ग है उस वर्ग को भी कहीं एकत्रित करके और उस वर्ग में श्री
श्रीमद् भागवत के द्वारा या जीवन के सर्वश्रेष्ठ उपास्य सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति और सर्वश्रेष्ठ जीवन के उद्देश्य को साक्षात करा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कार्य है और उसके लिए श्री महाराज जी की जितनी वंदना की जाए वो वंदना कम है। श्री रूप गोस्वामी जी की समाराधना गौड़ीय वैष्णवों का अत्यंत अत्यंत प्रिय विषय है। हम लोग रूपानुग उपासना करने वाले हैं, वृजजनों का आनुगत्य ग्रहण करके ये उपासना है और ये उपासना प्रारंभ होती है श्री रूप गोस्वामी जी के आनुगत्य के द्वारा। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रजलोकान सारता, और जो ब्रजलोक है उस ब्रजलोक की यदि व्याख्या की जाए तो ब्रजलोक की व्याख्या यही है कि यथावस्थित देह में जब विराजमान है, साधक देह में विराजमान है तो साधक देह में हमारी उपासना पद्धति होगी श्री रूप गोस्वामी जी का अनुकरण करने वाली। जब शुद्ध देह में विराजमान होंगे तब उपासना पद्धति होगी श्री रूप मंजरी का अनुगत ग्रहण करके श्री युग सरकार की सेवा करने वाली। यहां हम श्री रूपानुग होकर के आराधना कर रहे हैं। एक बात बड़ी मार्मिक श्री महाराज जी ने कह दी, श्रीमन महाप्रभु और श्री महाप्रभु का पूरा परकर स्वरूप में मुझे महाराज जी संशोधित भी कर देंगे, मेरी ऐसी भावना है, मैं अपनी भावना कह रहा हूं और उसे प्रमाणित करवाना चाहूंगा, यदि उसमें कहीं संशोधन है तो उसे संशोधन करेंगे कि श्रीमन महाप्रभु और श्री महाप्रभु का पूरा परकर वह रागात्मिका परकर है परंतु उसका अपना अभिमान है रागानुराग। विराजंती अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु रागात्मिका श्रुता इयम रागानुगोच्यते। तो वो परकर तो नित्य परकर है परंतु श्री महाप्रभु का स्वयं भी यदि कहीं यथावस्थित बाह्य स्वरूप में श्री महाप्रभु का यदि स्वरूप कहीं प्रकट होता है, महाप्रभु यदि निज अभिमान रखते हैं तो वे ये कहते हैं ना हम विप्रो नच नरपति राधावर्त पदकमल योर आगे दास दासा दासा, तो उनका अपना जो अभिमान है वो अभिमान कहीं रागानुगा का अभिमान है परंतु रागानुगा का अभिमान समझ करके कोई महाप्रभु को कुछ और समझ ले तो महा अनर्थ हो जाए, बड़ा भारी अपराध हो जाए। श्रीमन महाप्रभु तो श्री राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के विराजमान दोनों स्वरूप, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्रीमन महाप्रभु अथवा अंतकृष्ण बहिर्गौरम होकर के राधा कांति सुवलित स्वरूप श्रीमन महाप्रभु, दोनों भाव अपनी अपनी जगह विराजमान। राधा कृष्ण मिलतनु श्रीमन महाप्रभु हैं और राधा कांति और भाव से सुवलित श्री कृष्ण ही श्रीमन महाप्रभु हैं, दोनों ही भाव अपनी जगह सही है परंतु श्रीमन महाप्रभु का जो अपना जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप तो दिव्यात दिव्य स्वरूप ही है। भले साधक भले अपने अवतार काल लीला में या अपने नित्य लीला में श्री नदिया की लीला में महाप्रभु अपना अभिमान कुछ भी रखते हो, वो अभिमान भी जब श्रीमन महाप्रभु बहिर्दशा में विराजमान है तब उनका अभिमान एक है, जब वे अर्धबाह्य दशा में विराजमान है तब श्रीमन महाप्रभु का अभिमान भी कुछ भिन्न है और जब वे अंतर दशा में विराजमान है तब श्रीमन महाप्रभु का अभिमान कुछ अलग है। महाप्रभु में तो सब रस विराजमान है उनमें मंजरी भाव भी है, उनमें साधक भाव भी है, उनमें मंजरी भाव भी है, उनमें श्री राधिका भाव भी है। महाभाव प्रकाशन करते समय या महाप्रकाश प्रकाशन करते समय उनमें श्री कृष्ण स्वरूप भी विराजमान है, उनमें अन्य अन्य जो स्वरूप हैं, मंजरी स्वरूप, सखी स्वरूप, सारे जितने भी भाव हैं, वे सारे के सारे भाव श्रीमन महाप्रभु में तो विराजमान है। तो महाप्रभु का स्वरूप बड़ा दिव्य स्वरूप, जैसा महाप्रभु का स्वरूप वैसा ही स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी का। ये रूप नाम आहा अद्भुत या हरित विघ्न नाश, ये नाम परम पावन है। इन छह गोस्वामी पादों का यदि नाम ग्रहण कर लिया जाए तो अभीष्ट पूर्ति होगी, जिनके द्वारा भजन में आने वाले जितने भी विघ्न हैं वे सब व्योम नष्ट हो जाएंगे। अभीष्ट पूर्ति के लिए स्वाभीष्ट भाव मय जो भाव हैं उनकी प्राप्ति प्राप्त होगी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल भावों की प्राप्ति होगी, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध भावों की प्राप्ति होगी, स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध जो भाव हैं उन विरुद्ध भावों का निराश होगा। तो पांचों प्रकार के जो भाव हैं, कौन सा रह गया, एक कोई रह गया, हाँ तो हाँ स्वाभीष्ट भाव मैं वो तो है ही। तो जितने भी पांच प्रकार के भावों का जहां श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे हैं, उन सारे के सारे भावों को प्राप्त कराने वाला अभीष्ट पूर्ति, चार प्रकार के अभीष्ट भावों को प्रदान करने वाला और अभीष्ट भावों में बाधा डालने वाला जो भाव है, उस भाव बाधा डालने वाले भाव की भी निवृत्ति करने वाला जिनका नाम है, बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो जिनका नाम इतना पावन है, श्री रूप गोस्वामी पाद की अंतर्धान तिथि मना लेना कोई गड्डल का प्रवाह नहीं है, सबकी जन्मतिथि मनाई जाती है, सबका अंतर्धान तिथि मनाते हैं, श्राद्ध दिवस भी मनाते हैं जगत में, बट ये कोई गड्डल का प्रवाह में यूं ही बस धक्का मार रूप में एक प्रवाह चल रहा है कि महापुरुषों की जयंती मनाई जाए, महापुरुषों का अंतर्धान मनाया जाए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद की भी एक हम अंतर्धान तिथि मना रहे हैं, उनकी विरह तिथि मना रहे हैं, विरह महोत्सव मना रहे हैं, केवल गड्डल का प्रवाह में हो सो बात नहीं है। यह दिन एक विशेष उद्देश्य रखने वाला दिन, क्यों बोल, श्रीमद महाप्रभु कोई, श्री रूप गोस्वामी पाद कोई मामूली वस्तु नहीं है, श्री रूप गोस्वामी और श्री महाप्रभु एक है। कभी कभी गोस्वामी पाद के केवल उस वचन को अंडरलाइन करूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में रखूंगा कि प्रभु एक रूपे, निजान रूपे, प्रिय स्वरूपे, दैत्य स्वरूपे, उसमें कहीं है प्रभु एक रूपे। श्री रूप गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु से एक स्वरूप होकर के विराजमान है, इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्ट यदि कोई जानता है तो श्री रूप गोस्वामी पाद ही जानते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद की यह तिथि श्रीमन महाप्रभु के समाराधना से बिल्कुल अभिन्न है। महाप्रभु की समाराधना और श्री रूप गोस्वामी पाद की समाराधना दोनों एक वस्तु होकर के बिराजमान। श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो कृपा हम जीवों पे किया, हम तो स्वार्थी हैं, अपनी दृष्टि से सोचते हैं, अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी की दृष्टि से बात को सोचते हैं, और जब अपनी उपयोगिता की दृष्टि से सोचा जाए तो श्री कृष्ण क्षमा करेंगे जो कार्य नहीं कर सके। श्रीमद महाप्रभु भी एक उद्देश्य लेकर के आए परंतु वो कार्य नहीं कर सके, महाप्रभु को अपनी सामर्थ्य स्थापित करनी पड़ी श्री रूप गोस्वामी पाद। तो श्री रूप गोस्वामी पाद का जो अवदान है वो अद्भुत है। श्री कृष्ण अवतार का एक प्रयोजन था, बड़ा प्रसिद्ध प्रयोजन है कि विनाशाय च दुष्कृताम। ठीक है, कभी इंद्र सिंह वराह अवतार धारण कर लेते, कृष्ण अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता हुई। फिर एक दूसरा प्रयोजन था, बड़ा प्रसिद्ध प्रयोजन है कि संस्थापनाय धर्मस्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री माध्वाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्रीमद बल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री ऋषभदेव जी, श्री कपिलदेव जी, सबको भेज देते आचार्य रूपों में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना कर देते, और किया भी उन्होंने। परंतु एक अंतरंग प्रयोजन था कृष्ण अवतार का, और वो कृष्ण अवतार का प्रयोजन मुझे कहीं संभाल लेंगे, मैं भूल जाता हूं। एक प्रयोजन था कि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम। श्री कृष्ण के अवतार का एक प्रयोजन था, दो प्रयोजन थे, प्रेम रस निर्यास आस्वादन करना। ब्रज गोपिकागणों का इतना प्रेम बढ़ गया, ब्रजवासियों का इतना प्रेम बढ़ गया कि उस प्रेम के ऋण को चुकाना तो, मूल को चुकाना तो, कैपिटल को चुकाना तो बड़ा दूर, उसके ब्याज के ब्याज को चुकाना भी कृष्ण के बस की बात नहीं थी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, न पा रही है हम, न पा रही है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का यह कर्तव्य बन गया कि जिसका ऋण मेरे ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, मैं उसकी जन्म भर सेवा करूं। ऋण चुकाना तो मेरे बस की बात नहीं है, जब ऋण न चुका सके तो अधमर्ण का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उत्तमर्ण की निरंतर निरंतर सदा सदा चेरी हो, चेरा होकर के, दास होकर के सेवा करे, उसकी महिमा को, उसको सुख देने का प्रयत्न करे। और इसलिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया, अपने परकर को विशेष रूप से सुख प्रदान करने के लिए। वैकुंठाद्य नहि जे जे लीला विस्तार से लीला करे, यहां पे मोर चमत्कार। वैकुंठ आद्य, आद्य शब्द के द्वारा निरूपण कर रहे हैं कि गोलोक में भी वहां सुख नहीं मिला कृष्ण, अप्रकट लीला में भी श्री कृष्ण जो माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं, उस माधुरी के आस्वादन में उनको वह सुख नहीं था, चाह रहे हैं और सुख दूं, और सुख दे करके श्री प्रिया जी के सुख को प्राप्त करके और सुख। अभी अभी हम सुनते रहे हैं श्री कृष्ण जैसे वृद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान, ऐसे श्री राधा प्रीति भी प्रेम भी वृद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान। विभुरप कल्याण सदा वृद्धि गुरुरप गौरव चल रहे अभिहीन मुह उपचित वक्रमाप शुद्ध जैत मुरुद्धि श्री राधिका नाग। अभी अभी श्रवण करके सुने सुके वृद्ध धर्माश्रयता विराजमान है। तो श्री श्याम सुंदर में अपूर्व जो प्रेम के आस्वादन करने की ललक विराजमान है, उस वो ललक इतनी बढ़ रही है कि और सेवा करूं श्री प्रिया जी की, श्री ब्रज गोपिकागणों की, और उनके प्रेम का और आस्वादन करूं, अपने माधुर्य को और ज्यादा प्रकाशित करूं। यहां पर कृष्ण रूप और गोपी प्रेम, इन दोनों में अपूर्व रूप से होड़ा होड़ी हो रही है। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह कहा नहीं जा सकता है। गोपी प्रेम बढ़ता है दुगना, कृष्ण रूप बढ़ जाता है चौगुना। कृष्ण रूप बढ़ता है चौगुना, गोपी प्रेम बढ़ जाता है अठगुना। कहीं अनवस्था विराजमान है, उस प्रेम की कहीं भी सीमा नहीं है। ऐसी स्थिति में उस प्रेम का स्वयं आस्वादन करना है और अपने प्रेम का आस्वादन कराना है। अतः प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस का निर्यास जो है उसका आस्वादन श्री कृष्ण को करना था। इसलिए श्री कृष्ण ने वैकुंठाद्य नहि जे जे लीला विस्तार, वैकुंठ आदि में जिस लीला का विस्तार नहीं है वहां पर कहीं घालमेल है। कभी ऐश्वर्य और तत्व प्रधान होने पर कहीं परमस्वीयता आ जाती है, परंतु क्योंकि वे लीला विग्रह हैं और लीला विग्रह सर्वदा सर्वदा परकीय होकर के ही विराजमान होगा, हमारे लिए कृष्ण तत्व रूप में उपास्य नहीं है। हम गौरी वैष्णवों के लिए श्री कृष्ण सदा लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं, और जब लीला बिहारी के रूप में ही वे उपास्य हैं तो श्री गोलोक में भी परकीय भाव विराजमान है। परंतु श्री गोलोक में कभी कभी तत्व की प्रधानता होने पर कहीं घालमेल हो जाता है, कभी मिश्रण हो जाता है। इस परंतु विशुद्ध रूप से नर्वत लीला का विस्तार यदि कहीं प्राप्त होगा तो वो प्रकट लीला में होगा, इसलिए प्रकट लीला में विशेष रूप से प्रेम रस निर्यास का आस्वादन है। वहां प्रेम रस निर्यास कभी तत्व ज्ञान तत्व दृष्टि से कभी संकुचित हो सकता है श्रीमद गोलोक की लीला में, अप्रकट लीला में, परंतु व्रज जो प्रकट लीला है वह प्रकट लीला नदवत विराजमान है, वह सर्वत नहीं है, सरोवर के समान नहीं है, हृदवत नहीं है। दो प्रकार की लीलाएं हैं हम जानते हैं, एक लीला है एक जो लीला है वह है मंत्रोपासना में, दूसरी लीला है स्वारस की। मंत्रोपासना में जो लीला है वह हृदय के समान है, और तालाब में लहर उठती तो है परंतु उतनी नहीं उठती है जितनी उठनी चाहिए, परंतु नद में जब लहर उठती है तो सुनामी भी आ जाती है। समुद्र में लहर उठेंगे तो सुनामी भी आ जाएगी। इसलिए नदवत लीला का यदि विशेष रूप से आस्वादन करना है तो प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, श्री कृष्ण को भी अवतार लेने की उत्कंठा हो गई, कृष्ण को भी अवतार लेना पड़ा, कृष्ण लीला का एक प्रयोजन था। और उस प्रेम लीला का अपनी लीला का जगत में स्थापन करके श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा कार्य किया कि गोपी प्रेम वह जगत के सामने प्रकट हो गया। यदि आप अपनी लीला को संसार में प्रकट नहीं करते, प्रपंच गोचर नहीं बनाते, प्रकट नहीं करते तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ठीक है, तुम अपने गोलोक में लीला कर रहे हो, कौन देखेगा? हमको पता कैसे लगता? अतः कलौ जदिष्यमानानां दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां स्वपुण्यं व्यत्नोदयशः। कलयुग के जो जीव हैं उनका भी कल्याण हो जाए, अतः राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। श्री कृष्ण ने राग मार्ग का प्रचारण तो कर दिया, परंतु राग मार्ग का प्रचारण करके भी श्री कृष्ण के हृदय में एक अभिलाषा, तीन अभिलाषाएं रह गईं। कृष्ण के हृदय की अभिलाषा भी अधूरी और श्री किशोरी जी के हृदय की अभिलाषा भी अधूरी, जुगल के हृदय में ही अभिलाषा अधूरी रह गई। कृष्ण के हृदय में बड़ी प्रसिद्ध तीन अंतरंग अभिलाषाएं थी, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यवाने एव स्वाद्यो ये नामृत मधुरमा, श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, श्री मेरे माधुर्य का आस्वादन करते हुए श्री राधिका को जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख कैसा है, मेरा अपना सौंदर्य कैसा है, तीन अभिलाषाएं। श्री कृष्ण गौर होकर के प्रकट हुए और कृष्ण की तीन अभिलाषाएं प्रकट हुई। जहां राधा कृष्ण मिलुक्तनु होकर के विराजमान हुए, ये गौर स्वरूप केवल कृष्ण की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला ही नहीं है, यह गौर स्वरूप श्री किशोरी जी की अभिलाषा को भी पूरा करने वाला है। जय जय श्री राधे। कृष्ण की अभिलाषाएं तो पूर्ण हुई, परंतु श्री प्रिया जी की अभिलाषा भी पूर्ण हुई। प्रिया जी के हृदय में भी एक अभिलाषा रह गई कि कब वो अवसर होगा जबकि बिना संकोच के गली गली में प्यारे का नाम गायन करती हुई उन्मुक्त होकर के मैं विचरण करूं, और जब गौर स्वरूप होकर के वो राय वेशे श्री मुरलीधारी जब विराजमान विराज हुए, उस समय श्री किशोरी जो गली गली में कृष्ण नाम का उन्मुक्त रूप में निसंकोच रूप में उच्चारण करते हुए विचरण कर सकी, राधिका स्वरूप में विचरण कर सकने में वे समर्थ नहीं हुई, परंतु कृष्ण रूप में जब गौर रूप में जब विराजमान हुई तो उस स्वरूप का गली गली में सबको उन्मुक्त रूप में कृष्ण नाम का दान करते हुए हाथी को भी, लता को भी, सिंह को भी, सर्प को भी कृष्ण नाम का गायन करते हुए, कृष्ण नाम का दान करते हुए और स्वयं उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए भी विराजमान हुई। श्री प्रिया जी के हृदय में एक अभिलाषा थी कि हाय प्यारे के उस प्रेम को कहीं प्रकट कर ही नहीं सकता हूं, कर ही नहीं सकती हूं। दुराप जनवर्तनी रत रपत्र पाभूयसी गुरुक्त विश्वर्षणी मन अतीव दौस्थम गतः। कहां ये दशा थी, दुराप जन श्याम सुंदर में मेरी प्रीति है, उस प्रीति को प्रकट नहीं करता कर सकती हूं। कभी आंखों में कृष्ण मिलन की स्मृति करके, कृष्ण रूप का ध्यान करके नयनों में आंसू आए और यदि गुरुजन खड़े हो घबरा करके कि कहीं हृदय का प्रेम प्रकट नहीं हो जाए, ठाकुर महाशय कहते हैं दौड़ करके रसोई में घुस जाती हैं और सखी पूछती है बोले अरे सखी रो क्यों रही है, उस समय कहती है बोले अरे सखी धुआं जो है वो आंखों में लग गया, इसने धुएं के कारण आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठाकुर महाशय कह रहे पंत श्री प्रिया जी जब गौर होकर के विराजमान होती हैं तब श्री प्रिया जी को ये संकोच करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रिया की दूसरी अभिलाषा, प्रिया की तीसरी एक अभिलाषा थी जो श्री कृष्ण लीला में प्रकट लीला में भी पूर्ण नहीं हो सकी, और वो अभिलाषा थी कि यत्ते सुजात चरणाम्बुर हम स्तनेशु भीता शलई प्रिय दही है, कि प्यारे तेरे चरणारविंद को अपने हृदय में, हृदय के ऊपर धारण करने में हम डरती हैं कि तेरे चरण हैं परम कोमल, हमारे वक्षोज हैं कठोर। यदि विधाता से ये प्रार्थना करें कि अरे विधाता हमारे वक्षोजों को तू कोमल कर दे तो रसिक श्रोमणी जाने तुझे सुख मिलेगा कि नहीं, इसलिए ये प्रार्थना नहीं कर सकती हैं। यदि ये प्रार्थना करें कि अरे विधाता हमारे वक्षोजों को तू कठोर रख तो तेरे चरणों का स्पर्श कराते हुए कहीं तेरे चरणों को वक्षोजों की ठोकर न लग जाए, इसलिए कठोर बनाने की प्रार्थना भी नहीं कर सकती हैं, कोमल बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करती कर सकती हैं। भ्रमत थी भवदायु सामना, हमारी बुद्धि जो है वो कहीं चक्कर में खा जाती है कि क्या प्रार्थना करें, कैसे तेरे पास में, तेरे साथ में दौड़ी दौड़ी कर कैसे तेरे साथ में लगी लगी डोलें, परंतु लगी लगी नहीं डोल सकती हैं। श्री गौर स्वरूप में जब विराजमान हुई श्री किशोरी जी की वो अभिलाषा भी पूर्ण हो गई, जहां अपने हृदय में प्यारे को विराजमान करके श्री किशोरी जो आज अंतकृष्णम बहिर्गौरम होकर के श्री श्याम सुंदर को विचरण अपने हृदय में विराजमान होकर के सर्वत्र जा रही हैं, नाच रही हैं और उस प्रेम का उन्मुक्त रूप से दान भी करना चाहती हैं। संकल्प लेकर के आए थे कि स्वभक्ति श्रियम अनर्पित चरिन समर्पयकुम उज्ज्वल, उस स्वभक्ति श्री का मैं दान करूंगा, संकल्प प्रतिज्ञा तो हुई थी कि उस स्वभक्ति श्री का दान करूंगा, दान करने का प्रयत्न भी किया परंतु तो अंतर दशा इतनी भारी हो गई कि कभी समुद्र में कूद पड़े, स्वरूप गोस्वामी दौड़े हुए जाए, और कभी रेतिया में लिपटे हुए श्रीमन महाप्रभु को देखें, जालिया के जाल से निकले हुए श्री महाप्रभु कहीं किनारे पर पड़े हुए हैं और जालिया मछुआरा ये कह रहा है कि मैंने एक मृत शरीर को देखा है, इधर खाली किया हुआ है उस मृत शरीर को, तुम उधर जाना मत, कोई प्रेत तुम्हारे ऊपर भी घुस जाएगा, कोई पिशाच तुमको भी लग जाएगा, और स्वरूप दामोदर उसके गाल के ऊपर एक चांटा लगाए और कहे मैं नृसिंह मंत्र जानता हूं, अभी सारे भूत को उतारता हूं, और उसके संकेत को प्राप्त करके जिस समय श्री महाप्रभु के स्वरूप को देखें और श्री महाप्रभु को जब बहिर्ज्ञान आए उस समय कह रहे हैं बोले हे मैं तो वृंदावन में लीला कर रहा था, वृंदावन में श्री युगल के लीला विलास का दर्शन करते हुए विराजमान था, ये क्या हुआ, यहां पर मैं जगन्नाथ जी के शिखर कैसे दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी की ध्वजा कैसे दिख रही है, यहां पर मैं पुरी में कैसे आ गया? और श्री स्वरूप गोसाई स्वरूप दामोदर उस समय कह रहे हैं, बोले महाराज धन्य हो धन्य, तुम तो अपने प्रेम में मूर्छा छल में वृंदावन की लीला का दर्शन करो, दुर्दशा जो होती है वो तो हम भक्तों की हो रही है। तो श्रीमद महाप्रभु जिस उद्देश्य को लेकर के आए कि मैं प्रेम भक्त रस का दान करूंगा, उस प्रेम रस को दान करना प्रारंभ तो कर दिया, परंतु उसे सम्यक प्रकार से निभा सकना श्री महाप्रभु के रसमय स्वरूप में संभव नहीं हो सका। निजानंद में अंतश्चिंत स्वरूप में वह गंभीरा की जो लीला है, उस गंभीरा की ठीक है, छह वर्ष की लीला में श्री नीलाचल की छह वर्ष की जो यात्रा की लीला है उस लीला में, और कुछ समय बाद और श्रीमद् महाप्रभु ने कुछ लीला का विस्तार किया, कुछ रस का दान किया, परंतु सम्यक प्रकार से उसको परिपूर्ण रूप में स्थापित करना और उसे एक शास्त्रीय आधार पर स्थापित कर देना, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप कहीं स्थापित कर देना, इसकी अभी कसर रह गई। और ऐसी स्थिति में प्रभु एक रूपे श्री रूप उनको प्राप्त हुए और श्री रूप में अपनी संपूर्ण शक्ति का श्रीमद् महाप्रभु ने जिस समय स्थापन किया श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा, फिर वह भक्ति मार्ग स्थापित हुआ जिसके कारण हम गौड़ीय भक्तगण श्री रूपानुग होकर के उनकी आराधना करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद यहां पर एक धारा चली थी रस की, प्रारंभ हुआ है विषय प्रवर्तन जो हुआ वो रस की धारा के रूप में ही हुआ, भक्ति को रस ही नहीं माना गया, रस और भाव ये दो अलग अलग स्थितियां थी, भाव को रस के साथ में रस भाव एक साथ उनका जोड़ा बना करके द्वंद्व के रूप में ही प्रस्तुत किया गया, परंतु जो लौकिक कवि थे उनके हृदय की कहीं एक भावना रही कि क्योंकि जन सामान्य भक्ति तक पहुंच नहीं सकता है इसलिए भक्ति को हम भाव कोटि में रखेंगे, हम रस कोटि पर नहीं रखेंगे। सुलभता की दृष्टि से, सर्वत्र व्यापकता की दृष्टि से, प्राप्यता की दृष्टि से, सुलभता की दृष्टि से उन्होंने एक तर्क दिया और यह कहा कि नहीं, जो श्रृंगार रस है लौकिक रस है उसमें तो सामान्य हर एक आदमी प्रवेश कर लेता है इसलिए उसको तो हम रखेंगे रसकोटि में। काव्य प्रकाश इत्यादि कार ने उसको तो कहा उसको तो हम रखेंगे रसकोटि में क्योंकि भक्ति में कुछ सीमित लोगों का ही प्रवेश हो सकता है वो भी परम उत्कृष्ट रस, परम उत्कृष्ट रस होने पर क्योंकि वह जन सामान्य मानव मात्र के काम की वस्तु नहीं है इसलिए उसको हम भावकोटि में रखेंगे। इसलिए रस अलग रखा भाव अलग रखा। परंतु यदि आलू हर ढकेल पर मिल जाए तो आलू कोई बड़ा थोड़ी हो जाएगा, रत्न तो रत्न रहेगा। ऐसी स्थिति में लौकिक रस यदि मानव मनोवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, मूल प्रवृत्तियों के साथ में यदि लौकिक रस जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी में इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, हम सब में 11 मूल प्रवृत्तियां हैं, भय की प्रवृत्ति है, वात्सल्य की प्रवृत्ति है, काम की प्रवृत्ति है, भूख की प्रवृत्ति है, क्रोध की प्रवृत्ति है, ये कुछ इंस्टिंक्ट है मनोविज्ञान में इनको मूल प्रवृत्तियां कहा गया, परंतु मूल प्रवृत्तियों का सीधा सीधा संबंध है बुद्धि के साथ में, सीधा सीधा संबंध है त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ में, जबकि भक्ति का सीधा सीधा संबंध जो है वह त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ में नहीं है। भक्ति तो सानंद विशेषात्मा, सानंद विशेषात्मा होकर के विराजमान है, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग जो रति है उस रति की ही परपुष्ट अवस्था श्री कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति विराजमान है, लाभनी सार संवेद संवित श्री कृष्ण भक्ति विराजमान है, इसलिए कृष्ण भक्ति दिव्याति दिव्य है और रस कोटि में स्थापित होने की अधिकारिणी यदि कोई है तो वह श्री कृष्ण रति ही कृष्ण भक्ति ही तत्वतः रस अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ है। कृष्ण रति ही कृष्ण प्रेम बनकर के रस अवस्था को प्राप्त करने में एकमात्र समर्थ है और उसको जानने के लिए एक बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता थी। स्वरूप दामोदर ने कभी किसी दिग्विजयी कवि के प्रसंग में कुछ वचन कहे, मुझे याद तो नहीं है, कहीं लिखे हैं मेरे पास में, यहाँ पर नोट हैं, परंतु उनमें कहीं कहा कि वो अलंकार जो नहीं जानता है, छंद शास्त्र नहीं जानता है, व्याकरण में जिसका प्रवेश कर नहीं है और कृष्ण भक्त रस वर्णन करने के लिए बैठे तो सही जाने चार वो क्या राख जाएगा। हाँ, तो कवि के प्रसंग में तो श्री रूप गोस्वामी पाद एक ऐसा व्यक्तित्व हुए, अद्भुत चिन्मय व्यक्तित्व, कि जिन रूप गोस्वामी पाद ने कृपा करके दिव्यादि दिव्य जो रस है उस रस को एक स्तर के साथ में, उसमें कहीं लौकिकता ना आए, उसमें कहीं छिछलापन ना आए, उसमें कहीं बाहरी व्यवहार के प्रवृत्तियों का प्रवेश न हो, शास्त्रीय दृष्टि में भी वह ठीक बैठे और दार्शनिक दृष्टि से भी वह ठीक बैठे, काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी वह ठीक बैठे और उसका काव्यात्मक प्रयोग भी ठीक रूप में हो जाए, तो उन्होंने एक और लक्षण ग्रंथ लिखे, नाटक चंद्र का प्रभृति, वृद्धावली लक्षण प्रभृति जो लक्षण ग्रंथ हैं, उन लक्षण ग्रंथों को भी श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट किया और साथ के साथ में उन्होंने भक्त रस की स्थापना करने वाले प्रकरण ग्रंथों को भी लिखा, श्री उज्जवल नीलमणि श्रृंगार रस का वर्णन करने के लिए और श्री भक्त रसामृत सिंधु जैसे भक्त रस का स्थापन करने वाले ग्रंथ लिखे, परंतु केवल आचार्य रूप में ही उनकी स्थापना हो सो बात नहीं है, उनका अपना अंतरंग जो स्वरूप है वह अंतरंग स्वरूप कहीं प्रकट होता है, उनकी ललित माधव में, उनकी विदग्ध माधव में, उनकी दानकेल कौमुदी में, उनके अन्य अन्य जो स्तव माला के स्तव हैं उनमें उनके हृदय का भाव, निज भाव उनका सामने प्रकट होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद का इतना अपूर्व उत्कल का बल्ले नहीं, मैं हूँ वो हृदय का भाव जो उत्कंठा है, वो उत्कंठा कहीं प्रकट होती है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद का जो अपना निज स्वरूप है वो उनके काव्य में प्रकट हो रहा है, परंतु एक आचार्य रूप में श्रीमद महाप्रभु ने जो एक भाव स्थापित किया, श्री रूप गोस्वामी ने प्रयोग करके उसको अपने जीवन में भी उतार करके, अवतार काल में, लीला काल में भी उसको उतार करके दिखाया। वैराग्य प्रधानता सनातन और रूप में विराजमान, महाप्रभु की जितने भी परिकर वो वैराग्य प्रधान, कुछ ऐसी कारिका है जहां देख सुख पाए श्री चैतन्य भगवान, कुछ महाप्रभु परिकर वैराग्य प्रधान, हाँ जहां देख तुष्ट हो गौरव भगवान, तो श्री महाप्रभु का जो परिकर है वो वैराग्य प्रधान है, एक और वैराग्य की पराकाष्ठा वहां पर दिखा रहे। दूसरी ओर श्रीमद महाप्रभु का जो परिकर है श्री रूप गोस्वामी जी, स्वयं आराधन करके साधन करके उस साधन की पद्धति को दिखा रहे हैं और ठेका ले रखा है, ऐसे ठेकेदार मिल जाए तो बस हम सभी के आलसियों का तो कल्याण हो जाए। श्री रूप गोस्वामी जी ठेका ले हुआ है, महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी से कहा जाओ तुम्हारे भाई वृंदावन में विराजमान है, करवा करंगाधारी जितने भी भक्तगण आए गौड़ देश से और कहीं दूसरी जगह से, उन सबों का पालन करने की ठेकेदारी तुम्हारी। तो भजन में लगाना, भजन करवाना, एक ठेका लेकर के बैठना कि आओ मेरी शरण में, मैं तुमको वो वस्तु प्रदान करूंगा जो वस्तु सर्वोत्तम है, ऐसी सर्वोत्तम वस्तु जिन्होंने प्रदान की, केवल दिशा निर्देश मात्र करना था। श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का गायन करेंगे तो एक एक वस्तु को लेकर के, फिर एक एक पक्ष को लेकर के, उनके काव्य को लेकर के, उनकी अपने अवतार काल की जीवन साधना को लेकर के, उनके नाटकों को लेकर के, उनके शास्त्रीय विवेचन को लेकर के, उनकी दार्शनिकता को लेकर के, उनका रसिक जनों के प्रति, भक्तों के प्रति जो प्रीति है उस प्रीति को लेकर के, श्रीमद वृंदावन के प्रति, वृंदावन के तीर्थों के उद्धार के प्रति जो उनकी प्रीति है, कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीहितम तत्तत् कथारसश्चास्य कुर्यात् वासर भजे सदा। ये मुख्य जो रागानुगा की पद्धति है, उस रागानुगा की पद्धति को उन्होंने जैसा स्वयं ने आचरण करके भी दिखाया, इसलिए वे आचार्य भी हैं, वे परम परम वंदनीय हैं। उन रूप के अनुगत्य के बिना जीवन का वह परम परम लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी की तिथि की समाराधना, श्री रूप गोस्वामी जी की समाराधना श्रीमद महाप्रभु की समाराधना है, और यह समाराधन हमको सहज ही श्री रूप गोस्वामी जी का नाम सहज ही उनके श्री चरणारविंद में प्रकट करा देता है कि जीवन के सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम धाम, सर्वोत्तम अभिधेय को सुस्पष्ट रूप से स्थापित कर सकने की सामर्थ्य और कृपा यदि किसी ने विशेष रूप से की, वे श्री रूप गोस्वामी पाद। फिर से दोहरा दूं कि सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम जीवन का प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन, इन तीनों को सर्वोत्तम रूप में प्रकट कर सकने की सामर्थ्य और कृपा जिन श्री रूप गोस्वामी जी ने की, उन श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा के द्वारा ही इस मार्ग पर हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बात केवल कहने की नहीं है, ये बात तो हृदय में धारण करने की है कि आद दानस त्रणम दंतई, दांतों में तिनका दबा करके श्री रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करें, कृपा करें। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, जय श्री राधे, इन्हीं शब्दों के साथ में।
आप लोगों ने सुना श्री भट्ट गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर रूप में भट्ट गोस्वामी के वैशिष्ट्य को स्थापना की। ये रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, उनके भावों को जानने वाले हैं और जान करके उसकी स्थापना करने वाले हैं। शास्त्रों में रागानुगा की बात कही गई है, वो तो ठीक है, किंतु उन्होंने बतलाया रागानुगा से भी रूपानुग बहुत श्रेष्ठ। सभी रागानुगा रूपानुग नहीं है, किंतु रूपानुग सभी रागानुग
विशुद्ध रंग।
इन्होंने और भी बतलाया श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व श्री रामानु आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बादित्य, निम्बाद बहुत से आचार्य हुए हैं, किंतु पहले भक्ति केवल थी, भक्ति मैंने यहां पर पहली भक्ति तो थी किंतु भक्ति रस नहीं था। श्री रूप गोस्वामी ने किस प्रकार से स्थाई भाव, उसके ऊपर में विभाव, आलंबन, उद्दीपन, संचारी इत्यादि भावों के मिलन से कैसे भक्ति रस होता है, कैसे वह शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, ये पांच मुख्य और हर्ष अद्भुत करुण रिंद्र भयानक विभस इत्यादि ये सात बारह रस कैसे होते हैं, इसकी क्रियाशील रूप गोस्वामी ने ही प्रथम दिखलाई, इसके पहले नहीं। पहले केवल वैदिक भक्ति के रूप में था, इसलिए रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य। उन्होंने ये भी बतलाया कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी भावाविष्ट हो जाते और जिस प्रेम को नहीं दे सके, जिस प्रक्रिया को जिसमें वो कभी अर्थ बाह्य अवस्था, कभी अंतर दशा, कभी बाह्य दशा, किंतु
श्री रूप गोस्वामी ने उन भावों को जान करके जगत को दिया है। इसलिए रूप गोस्वामी के अनंत वैशिष्ट है, उसको स्पर्श करना भी बहुत कठिन है। अब उसी की कड़ी में अब तो रात कुछ हो गई, सुनने की तो और बहुत से वक्ता थे, किंतु अब मैं सभा के सभापति परम विद्वान ऋषि तत्वज्ञ हमारे श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी निवेदन करता हूं कि वे रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों का वर्णन करते हुए उनके चरणों में
आज्ञा करता हूं। कहिए
महाराज, बोले
आज्ञा।
बहुत अच्छा, बहुत आपकी बात नवीन नवीन बात
ठीक
है।
आदि भगवान
पकड़ते जुड़े तभी तो विलायत पर पहुंच गए। माया मृग जीव माया मृगम दयाया भाव दया भाव दयते शतमन मधावत वंदे महापुरुषते चरणा प्रभु जी, आपके चरणारविंद की वंदना करता हूं। सबको छोड़ करके जो अरण्य चले गए या वृंदावन आ गए, माया मर्गी जीवों को जो पकड़ते रहे और कीर्तन करो, शांति ही मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। अगर विश्व में शांति लानी है एक ही काम है कीर्तन, और दूसरा था श्रवणे मथुरा नयने मथुरा वदने मथुरा कथने मथुरा पुरतो मथुरा परतो मथुरा 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 मथुरा। इनको राम मिल गया मथुरा, और सात पुरियों में ईश्वर का नाम मिले या न मिले, परंतु मथुरा में राम का नाम मिल गया। दो बार बोलो राम निकलेगा। मथुरा 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 तो राम 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 निकलता है। और थू क्या करता है, जिसके मुख में भजन न हो उसके बीच के लिए मथुरा ने कह दिया मरा, उल्टा करो राम। तो मथुरा ऐसी पुरी
यहाँ हमारे सनातन जी बोले थम माथुर वृद्ध वक्त्र विगलत पीयूष धाराम केवल अत्रासीत के नंद आओ आओ सनातन जी आओ आओ यही था नंद बाबा का भवन। हाँ वाह अत्रासीत के नंद सदम यात्रा भवत भंजनम शकटासुर यही मरा था। अच्छा यही शकटासुर मरा था तो इत्थम माथुर वृद्ध वक्त्र विगलत इस प्रकार जिसमें कुल में मैं पैदा हुआ हूं है ना हमारा भी लगाव देख लो कोई है थोड़ा सा माथुर वृद्ध वक्त्र विगलत पीयूष धाराम केवल अरे क्या करोगे इससे बोले मध्य मधुपुरी मध्य चरश्यामी ऐसे ही मैं मथुरा घूमता रहूंगा जाता रहूंगा। क्यों रूप गोस्वामी जी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया उन्होंने कहा यही मथुरा थी। हाँ यही मथुरा थी यही सब कार्य विरुद्ध धर्म हुए विरुद्ध धर्माश्रय हो गई। झूठ बोला हमें कभी कृपा नहीं करोगे भगवान बोले मथुरा में करूंगा। झूठ बोला था मिथ्या बोली थी आप सत्य 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 प्रथम सत्य परमतर सत्यम सत्य सीयोनम सत्य दिन भर सत्य 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 करते रहते हो असत्य बोला मेरा भी कभी नंबर आएगा कि नहीं कृपा करेंगे कि नहीं बोले मथुरा मथुरा मंडल। झूठ बोलूंगा बहुत बढ़िया जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई ना हम भक्षत बान बिल्कुल झूठ सोले आने ना हम भक्षत बान सर्वे मिथ्या झूठ बोला मेरा उद्धार कहां होगा बोले मथुरा। तो आप कभी पिटिए कि नहीं बोले नहीं नृसिंहाव कारी मारा हिरण्यकश्यपु बारहा बनकर के हिरण्याक्ष मारा तो वो पिटने वाला धर्म तत्व बोला कभी हमसे पिटोगे ही नहीं बोले ब्रजमंडल में खेलन में कुका को गोसैया हरे हरे जीते श्री दामा हरे हरे लात तो मत मार क्यों उसे ही कृतार्थ किया। अरे सज्जनों को तो सभी करते हैं ये देखो कथा झूठ को भी तार दिए और जो हमेशा ही प्रभु परमेश्वर मारता रहता था वो कहां पिटा ब्रजमंडल में एक घोड़ा बन तक भांडिल बन तक 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 अरे अति अधिकार जनावत या के अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया और खेलन में को काको गोसैया हर हारे को जीते श्री दामा हरी हार गए और श्री रामा जीत गए। चल बेटा नंद के बन जा घोड़ा ये घोड़ा बना ले भूमि है ये सब कुछ आनंद देती है ये पराम्बा ये पराशक्ति ये गोलोक में पंखों के बीच में रहने वाली वो रोती नहीं थी कभी बोले रहूंगा तो जाएगी वो बोली कभी आप कृपा करोगे बोले हाँ राधा बुलाऊंगा भाई खूब रोलाऊंगा रोएगी छाती फाड़ फाड़ करके और यही आए राधा रानी को क्यों संकल्प विकल्प संग एक को होता है सत्संग संग संगम विरह विकल्प वर्ण है विरहो न संगम तस्या विप्रलंब रोया था जब देखो जो संग नहीं रहती है झूला झूल ले दोनों राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण अरे कब हाथ चलने तो दोनों में फिर लड़ाई होने तो और लड़ाई के बाद मजा आएगा कुछ जब स्वामी रोएंगी बोले गोलोक में तो नहीं होगा मैं वहीं आता हूँ। अरे वो विप्रलंब श्रृंगार मैं तुझे ब्रजमंडल में ठीक करूंगा ब्रजमंडल में ऐसा चिकाऊंगा ऐसा जो याद कर जाए भगत भगत हुए और गोपियां रोएंगी बरसा की बूंदे पड़ेंगी बड़ी जोर से निसदन बरसत नैन हमारे निसदन बरसत नैन हमारे उद्धव जी हम पे तो हमेशा सदा रहत पावस रे तो हम पर जगते श्याम सिधारे। जब से मथुरा चले गए हमको तो तब से ही वज्र पड़ गया। तो ये मजा भी तो ले लो राधिका जी, ये मजा हरेक को नहीं मिलता है, गोलोक में नहीं मिला था। तो विप्रलम्ब श्रृंगार रोया था उसकी पूर्ति की। क्या भगवान ने कभी ऐसा भी किया, किसी अवतार में देख लो आप, जो किसी के जब रंगौड़ी हो गई हो और बड़ी खुश हो रही थी रंगौड़ी कि मेरी रंगौड़ी होती है, दरवाजे पर दक्षिण में तो आई भी चलता है, दरवाजे को पहले पानी से पर रंगौड़ी करती है, और हमारे भगवान क्या करते थे, पेशाब कर जाते थे वो भी डर गई कि जो कहीं भी काम किसी अवतार ने नहीं किया। मेहनादीन वास्तव श्रीमद् भागवतम, मेहनादीन आदि शब्द से कुछ और भी समझ लो कि उसने चौक भी लगाई, चौक लगाया और प्रभु पधारे कृष्ण कन्हैया धड़ाक गुलाब जल छिड़क गया। मेहनादीन वास्तव हुआ कभी ऐसा, कभी ऐसा हुआ जो झूठा खाया, अच्छा चलो खा भी लिया। कभी कोई अवतार नरसिंह जी ने मट्टी चाटी, नहीं, बरहा जी ने चाटी, नहीं, अरे किसी और अवतार ने मट्टी खाई, नहीं, मट्टी कहां की खाई थी, ब्रज की, कौन ने, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आनंद कंद ब्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र ने। ये मिट्टी पुण्य श्री ब्रज भूमि भूत महम प्रागट्य संगीर्तये मृषाकार अकारी मृषाकार गले मले सिक तले ये नाम जाया रवे। जमुना जी की रज, हे प्रभु 24 अवतारों में एक तो बता जाए कोई कि मैंने मट्टी खाई, सब मना कर जाते, आइए मट्टी खाती, ये हमारी वो ब्रज भूमि है कि यहां ठाकुर जी ने रेत की कण, यमुना जी के किनारे की रमण रेती मट्टी खा, ये ना का मृषना मिट्टी सिकतले ये ना अंग जाया रवे, रवे माने सूर्य नारायण की अंगजा यमुना जी, ये नांग जाया रवे। और उसका फल क्या निकला आप समझिए, रूप गोस्वामी जी में ये चमत्कार आया ब्रजरज खाने के बाद। दान के कौन भी पहले बना चुके थे, 17 ग्रंथ हैं, 13 प्रसिद्ध हैं, 4 प्रसिद्ध हैं वो भी इनके, तो उस समय नहीं, और जब ब्रजरज मिल गई भगवान बोले रूप अरे जरा मेरी तरफ देख ले, मात्रे दर्श, अभी हमारे परम प्रेय और रूप गोस्वामी की एक प्रकार से ऑथोरिटी भट्टी ने वर्णन किया कि उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, मैंने कि मिट्टी खाई मिट्टी खाई मिट्टी खाई, मन ने सोचा मात्रे दर्श मुखे, लाला ने कहा दिखाओ, अरे यहां देख रजक प्रतिनिध, ये जो मैंने मिट्टी खाई है ना वो माँ माँ को दिखाई पहले भगवान, मात्रे दर्श मुखे रज प्रतिनिध सृष्ट वैधसी, अरे वैधसी सृष्टि दिखा दी। रूप गोस्वामी जी तुम्हें तो उन्होंने कवियों में कवि शास्त्रों में शास्त्रकार और बड़ों में बड़े हो भक्त रस के विधायक हो गए, हमारे लाला ने तो समग्र जगत जो था वो दिखाया माँ को, मात्रे दर्श मुखे रज प्रतिनिध सृष्टश्च सा वैधसी। तो किसको प्रणाम, नीलम जमुना जी, नील राधा नील कृष्ण, क्यों दोनों का एक ही रूप है, नीलम तन्महसो ज्वलम किमभसद रूपं सरूपास्महे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने ये बहुत बड़े काम किए जो अभी हमारे ब्रज के सम्मान्य परिवार के रत्न अच्युत लाल जी ने जो वर्णन किए, ये सामान्य बात नहीं थी। ये इतने शास्त्रों का वर्णन किया, भक्त रस की प्रतिष्ठा की है उन्होंने। क्यों? कि मिट्टी खाकर के भगवान ने वैदेशिक सृष्टि दिखाई, तो ये जो पंडित थे जो अपने मन में बड़ा घमंड करते थे, रस क्या है, रस क्या है, रस क्या है, उनको पीछे कर दिया गुरु गोस्वामी जी। और जितने अकारादि थे, आपको शब्द नहीं मिलेंगे जितने यों पे श्लोक ना मुश्किल हो जाएगा, यकार अक्षर से युवाइत नरोत्तम। रूप गोस्वामी जी ने जो अकारादि तुम से लिखे हैं, उनमें ल भी है, ट भी है, य भी है, ग भी है, गणे तुम्हें। पाणिनि जी ने जरूर लिखे थे गणों को शैली वगैरह वगैरह सूत्र, हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिख डाले। अगर आपके यहां अक्षर अल्प हैं तो अल्पाक्षरों में रूप गोस्वामी जी ने ढेर लिख डाले, तुम चिंता मत करो, छोटे अक्षर बोलते चले जाओ। गोस्वामी और जब पहाड़ तोड़ने की बात आई, जय जय दंड प्रय कच खंड से खंड ब्रज सच खंड स्वर्ण सपिंड सुरत गंड प्रय करंड ध्वज तुंड ऐसा हथौड़ा चलता है शास्त्रों के शब्दों का। जो बड़े बड़े रवदा हंडी गण कुल कंठी पे बिखर जाते हैं, आगे भाजती है। चलो आगे, रूप गोस्वामी जी से कौन माता कूट करेगा, ऐसे सरल बोले तो ऐसे, और ध्यान बोले आ कौन है आप, उज्जैन यहाँ चलो मथुरा जी के पास सेवा करूंगी, आप कौन है, मैं गुरु हूं, बैठ जाओ मथुरा जी की सेवा। वारे वीर मथुरा के चार श्लोक हैं, हैं उनमें से एक श्लोक है चौथा, अद्यावंत पतग्रहम ए उज्जैन। हाँ मैं महाकाल से आई हूं, मेरा नाम उज्जैन ही है, मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ। उज्जैन और महाकाल से आई हूं, तो पीक दानी ले लो मथुरा जी की,
मथुरा जी की पीक दानी ले लो।
हाँ भगवान जी की नहीं,
नहीं
मथुरा जी की पीक दानी ले लो
है?
बोले पीक दानी दे रहे हैं, मैं महाकाल से आई हूं। बोले कालों का काल महाकाल तो यहां बैठा है, काल से आई है, बैठ। रूप गोस्वामी जी ने कहा ले ले पी के दानी, जब जब मथुरा मैया पान खाएगी ना पुच्छ पुच्छ करेगी, और पी के दानी में लेना। अद्यावंत पतग्रहम कुरु करे, आप कौन है साहब, मैं मायापुरी, कहां से आए, हरिद्वार, मैं हरिद्वार हूं, तो मेरे लिए सत्कार के लिए कोई आसन वासन है, उन्हें है क्या, ये पंखा ले ले, मथुरा जी का पंखा कर चल। बोले मैं गंगा जी के तट का रहने वाला, बोले तभी तो ठंडी हवा आएगी मथुरा जी को, क्यों कि यहां बड़े बड़े विचित्र जीव आए, ये हता चक्र धरे राजन, मथुरा में खराब लोग हैं वो, जितने चक्र से मारे गए थे वे सब जन्म ले गए तो आए। बोले कहां जाए, बोले मथुरा में जाओ, तभी तो कंस आ गया बेचारा, मामा जी आए थे उनकी भी पूजा करी हुई नसीब किए तू, तो ये हता चक्र धरे न राजन, जो सब मथुरा में, तो मायापुरी होंगी या मायापुरी, या माया खायापुरी होती, पंखा ले ले मथुरा का कर। अद्यावंत पतग्रहम कुरु करे माये, ए धीरे से चला पंखा, माये शरणि जय, आप कौन, मैं कांची, कांची विष्णु कांची शिव कांची, कांची शहर, मैं कांची तीर्थ हूं जी, तो हमारा आसन कहाँ है, ये छत्र पकड़ ले, वो किसका? बोले मथुरा का। ये मथुरा और इसका मैं छत्र पकड़ू? बोले पिटाई हुई है नहीं तेरी अभी छत्रम कांच ग्रहण हे कांची छत्रम ग्रहण छत्र पकड़ इसका मथुरा जी का। सारे तीर्थ तो यहाँ है, अलकनंदा यहाँ है, बद्रीनाथ यहाँ है, केदारनाथ यहाँ है, गोवर्धन नाथ सबके नाथन के नाथ बैठेगी पकड़ छत्रम कांच ग्रहण। अब आई काशीपुरी जिनके लिए गर्व था काश्यादिपुर यो यद संत लोके तासांत मध्ये मथुरैव धन्या बराबर या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाहै नृणाम चतुर्धाम विदधात मुक्ति। मुक्ति देती है कौन? बोले काशी। अरे मथुरा देती है चारों प्रकार से। कैसे? काश्याद पुरियो यद संत लोके तासांत मध्ये मथुरैव धन्या। कारण जन्म, या तो जन्म हो या मौंजी व्रत यज्ञोपवी संस्कार मथुरा में हो जाए, या जन्म मौंजी व्रत अथवा मृत्यु ही हो जाए और मरे नहीं, अरे संस्कार ही हो जाए दाही मृत्यु दाही नृणाम चतुर्धा विदधा मुक्ति देर भी हो जाएगी बहुत जल्दी कर दो तीन चार मिनट तो ये चार तरह से मुक्ति होती थी। मुक्ति को पूछता कौन पूछता है गरिमा मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल के लिए भी मुक्ति बताए कैसे मेरी मुक्ति होगी तो सारे समय पर सागर आवत गाय चराए और वो ब्रज रज उन मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त है यार। अरे मुक्ति तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। ये वो ब्रजमंडल है ना मुक्ति की भी मुक्ति होती है। आप वहां बैठे मुक्ति की मुक्ति में भी मुक्ति को भी मुक्ति दी छत्रम कांच ग्रहण। तो काशी बोले क्या मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा वाराणसी? बोले हाँ हाँ खड़ा उठा किसकी? बोले मथुरा जी की। अरे मथुरा जी इनकी खड़ाऊ मैं उठाऊ? मैं विश्वनाथ रहा होगा तो विश्वनाथ विश्वनाथ के रहने में होगा। आग लगाई थी पता है क्या? भूल गया क्या भाई? जैसा राज्य राज्य में लड़ाई होती है ना ऐसा भगवान चढ़ गए और काशी में पेट्रोल छिड़का भी नहीं हवाई से स्वाहा वाराणसी की याद आई। हाँ ऐसा भी हो गया उठा तो काशी ने चरण पादुका रखी थी वारे रूप गोस्वामी। काशी को दिए खड़ाऊ छत्र दिया कांची काश पुरत पादू युगम धार। इतने में आ गई अयोध्या जी हम राम की राम हमें हुए थे हाँ तुम्हें तो हुए थे राम बहुत अच्छे हुए थे। चलो कोई बात नहीं राम में कृष्ण कोई फर्क नहीं है। हम वृंदावन में पास में बैठे हैं ज्ञान गुजरी यही चिट्ठी मिली थी और तब आए थे तुलसीदास जी भी बाद में तुलसीदास वे थे राम भक्त और राम के बिना रहते नहीं थे। जब यहाँ आए तो दो तरह के बटन आते हैं प्राय करके लोग कहते हैं ज्ञान गुरुड़ी में ही उनको भगवान के दर्शन और बल्लभ को संप्रदाय के कहते हैं गोकुल में हुए। चलो कहीं भी सही हुए तो ब्रज में ब्रज में तो हुए आपस में मत लड़ो ज्ञान गुरुड़ी में हुए तो वहां हुए तो बात तो एक ही होगी ब्रज में उनको दर्शन हुए। और राधे राधे आगे बढ़ो राधे राधे आगे बढ़ो। ये कब आए थे? जो नंददास जी को पत्र लिखा था तुलसीदास जी ने अरे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है छोड़ के कहाँ चले गए जो बालकन का झूठ खाए और जो ताता थे करते रहे दिन भर है कुछ काम न धंधो पर यही काम करते रहे ताधन रात बचावे। अरे कहाँ मर्यादा है छोड़ के चले गए कृष्ण के पास। नंददास जी ने कही राम कृष्ण कहिए उद्भो, अरे वे सागर में सिला कराई और वो गिर राखो करकी नकी कोर, वे धनुष्वान धारे वे बंसी धारे, राम कृष्ण कहिए उद्भो। भैया मैं तो कृष्ण को दास है गये, परम आपके मालिक के तो जैसे जैसे बिचारी ने धनुष तोड़ के एक औरत पाई सीता बाबू राम हल्ले गये, हमारी सभा ने रखे तो है रास्ता रचावे चलियो से, वो रास रचावे है तुम पे एक जैसे तैसे बनी वो तुम पे न रही हो राक्षस ले गए सीता। अब रही खाएंगे पीने की बात तो हमारा लाला तो सबे खिलावे सबे पिलावे, अभी वो खीर की कथा आप सुनी चुकी हो तो आखिर भोग तो लगी गयो सनातन जी, भोग तो लगो ही। तो हम तो भक्त जो है ये सब खाए हैं खबर बल्कि पहले चाख लेंगे मीठा के ठाकुर ठाकुर जी के भोग लायक है कि नहीं मिले धरे, ये है पृथ्वी रस की उपासना। तो महाराज काशी को गोस्वामी जी बोले खड़ा मिले पाग योगता अयोध्या जी, तो फिर मैं क्या करूं कुछ गीत गाऊं मथुरा जी, हाँ गीत गाओ आप संभ्रम मत करो जाते क्यों उत्पटन बोल जाओगी, यहाँ उत्पटन बोल जाओगे आपको आने से इतना ही है आप व्यवस्था समझ, मथुरा रानी का अभिषेक होने वाला है तो अभिषेक में आप व्यवस्था करो। मायोध्ये भज संभ्रमम स्तुत कथाम एक और द्वारकापुरी, हाँ तुम्हारी द्वारका भी आज तक पता नहीं लगा, द्वारी का कहाँ है द्वार दरवाजे ही नहीं मालूम पड़ा तुम्हें, तुम्हें द्वार का भी कोई लेटरिन पूछे कोई बाथरूम पूछे तुम्हारी द्वारी का किधर किधर से जाऊं तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ता है ऐसी नगर में रहती हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो आप आ जाइए अयोध्या जी ने तो स्तवन कर लिया है माँ अयोध्ये वज संभ्रम, तो द्वार का डर गया और डर कर गई और श्री मथुरा जी की स्तुति करने लगा जिसको रूप गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया ऊपर की तीन श्लोकों में, ये चौथा है मायोध्ये भज संभ्रम स्तुत कथा नोचार द्वार के, हे द्वारका ज्यादा जोर से चिल्लावे मत धीरे धीरे बोल, कान में मथुरा जी के में दर्द हो जाएगा धीरे से बोल, मायोध्ये भज संभ्रम स्तुत कथा नोद्गार द्वार के, अरे किंतु ऐसा भवती को हंत मथुरा दृष्ट प्रसादम दधि, ये तो मथुरा जी जिसके यो देख लेगी उसी का उद्धार हो जाएगा, ये बनाने वाले माए भैया में चला, तो ये बनाने वाले श्री रूप गोस्वामी जी उनकी जो ग्रह सब पहले बनाया गया, महाराज ने संस्कृत का पढ़ा तो रूप गोस्वामी जी बोले मेरे मेरे बोले जाएगा कुछ अपनी की तरफ से लाया है श्रद्धांजलि में लाया तो नहीं बनाई भी नहीं बाबा, इनने पढ़े मैंने सुन लिए तो मैं उनको दो मिनट में पढ़ देता हूँ, बनाया तो ये था भक्त वेदांत नारायण संभजी, इन्होंने रूप गोस्वामी के बनाए मैंने उन्होंने रूप गोस्वामी ध्यान कर लिया। श्री चैतन्य शेष सर्वोत्तम, ये अष्टक बन गया बैठे बैठे घर से नहीं लाया था हमारा
ठीक
बच्चा भाषण गलती हो तो संभाल लेना। श्री चैतन्य जो चैतन्य के शिष्यों में आपने बताया था ना वो सर्वोत्तम है हमारी भट्टी ने अवल कहा था, श्रील चैतन्य शेषु सर्वोत्तम राधिका कृष्ण लीलारसम राधिका कृष्ण लीलारसानंददम बंग रत्नम, पुरखे तो कर्नाटक के थे तो 1440 में पता गया या 1540 में भक्तरसाम सिंधु की भूमिका में भट्टी कुछ और शब्द लिखा है कहीं एक आध वर्ष का थोड़ा बहुत अंतर भी लिखा है, बंगरत्नं तथा पुण्यशीलं सदा रूप गोस्वामिनं भक्तवर्यं भजे, रूप गोस्वामिनं भक्तवर्यं माथुरे मंडले तीर्थ संपादकं, ये नाचे तो हमें यहाँ सोना दान कर दो या चांदी दान कर दो, पंडित लोग कहाँ बताते, इनने बताए कि यहाँ ये हुआ है या ये हुआ है, हाँ तो देह द्रव्य सब यहाँ दान करो और मथुरा में खूब दौलत आने लगी। तो माथुरे मंडले तीर्थ संपादकम, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ शास्त्र संशोधकम शास्त्रकारम मुनिम, ये रूप गोस्वामी नहीं मुनि है, शास्त्र संशोधकम शास्त्रकारम मुनिम बाल लीला प्रियम राधिका सेवकम रूप गोस्वामिनम भक्तवर्यम भजे, रूप गोस्वामिनम भक्तवर्यम भजे। दो मिनट हो, राम रास लीलो संगे रूप संधारकम, इनका नाम रूप क्यों है, बोले इनका श्रृंगार कौन कर रहा है स्वामिनी जी का, तो रूप बढ़ गए, बोले मैं करूंगा, रूप ने रूप रखा था स्वामिनी जी का, काजल बढ़िया लगाया था, आड़ भी लगाई थी और वर्णन भी इन्होंने किया था, तो रास लीलो सवे रूप संधारकम, ध्यान तो किया इन्होंने वहां स्वामी जी का, ऐसा श्रृंगार था, ऐसा श्रृंगार था, ऐसा श्रृंगार बाल लीलो सवे गोप बाल प्रियम गौर संकीर्तने सर्वथा मनकम गो रूप गो स्वामिनम भक्तवर्यम भजे जीव शिक्षा प्रदम। जीव गोस्वामी बड़े भयंकर थे, मथुरा भी जाते थे कथा वाचने, और सनातन जी को तो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण ही एक मिल गया, बाबा ले चल मदन मोहन जी, बाबा ले चल, बाबा ले चल, अरे मेरे नमक भी नहीं मिलेगा खाने को, मैं वृंदावन से आया था, हाँ ले चल सनातन जी, मुझे ले चल, ले आए नाव डूबी, पैसा मिला, बोले बोल सनातन 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 की जय, सनातन की जय, कृष्णदास ने जो व्यापारी था उसने बोला नाव बच गई, पैसा आया मंदिर बन गया, दौलत भी छोड़ गया जीव। और एक कथा और आती है गौरी मठ में, वो है या नहीं, क्यों कि वे आए थे रूप गोस्वामी के पास में बल्लभ भट्ट, बोले मैं आपका संशोधन कर दूंगा, जीव गोस्वामी जी ने धर ली यही घाट, और इतना शास्त्रार्थ दिया, इतना शास्त्रार्थ दिया जो बल्लभाचार्य के छक्के छूट गए, रूप गोस्वामी जी के पास में जाके बोले ये बालक कौन है, बोले आपका ही बालक है, अनूप का लड़का है, हमारे भाई का लड़का है जीव गोस्वामी, तो समझ गए कि चक्कर है, जरूर इस विद्वान ने इनसे इसने छोड़ा नहीं होगा, जीव गोस्वामी ने उनको छक्के छोड़ा दिए होंगे, चलो जाओ नंदगांव को, तो सनातन जी ले आए, हालत बहुत खराब है, आ जा क्षमा कर दो, और रूप से क्षमा मंगा, जीव शिक्षा प्रदम व्यास ग्रंथे रतम, और भागवत जी मरत रहे, जीव शिक्षा प्रदम व्यास ग्रंथे रतम गोपिका कीर्तने सर्वदा संस्थितम, जब वे बोलती थी जयत केतकम जन्मनाम्रज श्रेन्द्राशस्वदत्र ही, रूप गोस्वामी जी हमें भी बता दो, नहीं बताया अभी तक, कहते तो रहे लोग कि हाँ इसमें मंत्र छिपा है, य य ज ज पहला सातवां जयत तेजकम जन्म नाम, जयत तो वो पहला चरण य चारों में आवेगा, जय तेजकम जन्म नाम श्रयत इंदिरा शश्वत ही दयित दृश्यताम दक्षताव का तो ही धृता सब स्वाम चंद्रती, तो मंत्र कौन सा निकला, कर्पात्री जी महाराज ने पत्र लिखा कि वासुदेव इसमें है छिपा हुआ, जैसे जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम क्लीन इति जगौ, टीकाकारों ने अर्थ किया क्लीन इति जगौ, कलम क्लब वाम दृशा का अर्थ बड़ी ई और मनोहर का है अर्धचंद्र, तो क्या गाया भगवान ने वेणु में, जगौ कलम बाम दृशामरु में क्लीन की जग, मामूली लीला थोड़ी थी। रुद्रस्तु वंश का, जब रुद्र बन गए बंसी तो ब्रह्मा बन गए, इनकी कोई दंड बना, कोई कमंडल बना, कोई माया जो प्रकृति थी वो काली कांवर बनी, एक एक अंग में ठाकुर जी की ये सब आए महाराज। तो ये रहस्य तो बहुत अद्भुत है, कोई इसमें छिपा हुआ मंत्र। जय तीर्थकम जन्मनावृज श्रेत इंद्रा सच साव सा, वो ब्यास जी पागल थे जो सातवां अक्षर फिर साथ ला रहे हैं, यकार है तो चारों चरणों में यकार आ रहा है, शरद उदाशयी स्वाय सातवां स्व आवेगा, शरद उदाशयी सत सरस योदर श्री भूषा दृशा सूर अतनाथ थी शुल्क दास का। तो ये रया तो देखिए शरद उदाशय साधु जात सरस दूसरा ही आवेगा सरस योदर श्री मूषा दृशा सूरत नाथ थे शुल्क दास वरद निम्न तो निघ तो नेह ऐसा कुछ विद्वानों का कथन था। गोपिका कीर्तने सर्वदा संस्कृतम हास्य बीभस, बीभस के भी उदाहरण बड़े बढ़िया है, जैसे लाला ने मेहनादी नहीं करी है ना, हमारे रूप गोस्वामी ने भी बच्चे के भी रच दी है बहुत बढ़िया, उन्हें भी श्रृंगार में ले लिया। जैसा अभी हमारे भरजी ने कहा था वो कड़े बक्ष और ढीले बक्ष, तो दोनों ही नहीं जैसे भरजी को दोनों ही नहीं अच्छे लगे, उनको न ऊंचे और न नीचे। और रूप गोस्वामी जी जो है उनने सोचा हाथ से बीभत्स से दोनों ही ले लो, आगे चल गए कथा कभी यू लोग कहेंगे तो कहीं हाथ से भी ले लो तो कहीं बीभत्स भी ले लो। हास्य दिवस लीला परम सौख्यदम रूप गोस्वामिनम भक्तवर्यम भजे। रूप क्यों था, रूपैति रूप, रूप संकर्तने रूप संभाषणे, हर चीज में रूप संकर्त संकीर्तने रूप संभाषणे रूप श्रृंगार के रूप शास्त्रज्ञ के, शास्त्रों में भी आ जाओ बतराओ कोई रूप से। यस्य रूपम सदा रूप माधुर्यदम, यस्य रूपम सदा रूप माधुर्यदम रूप गोस्वामिनम भक्तवर्यम भजे। एक और पढ़ देता हूं, नैव शान्ति क्वचित् हृदय सिद्धौ क्वचित्। ए विश्व के लोगों सुन लो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कीर्तन करना, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी पैसे से ढेले से भवन से मकान से साधनों से जहाजों से होटलों से, नहीं मिलने वाली शांति। तो नैव शान्ति क्वचित् हृदय सिद्धौ क्वचित्, नैव संसार के रस्ते रेत राधिका कृष्ण लीलामृतम घोषकम। अगर तुम्हें अमृत पान करना है तो भक्त रसामृत भी नहीं है, भक्त रसामृत सिंधु है सिंधु, तो राधिका कृष्ण लीलामृतम घोषकम रूप गोस्वामिनम भक्त वर्यम भजे। सातवा यावने निश्चितम नैव सौख्यम क्वचित, यो ही नहीं चले आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे मुख सनातन, कौन है स्वतंत्रता संग्राम के बीज डालने वाले हुसैन शाह जा रहे हैं, कहां जा रहा है सागर मल्लिक है, तो मल्लिक के पद पर रहता है सनातन, ऐसे बोलता है जेल में डाल दो उसको, जेल में पड़े महात्मा गांधी बहुत परसवाद में पड़े, हमारे सनातन जी पहले चले आए जेल। रूप गोस्वामी ने किसी तरह निकाल दिया, ये किसी का मतलब सबका नौत में नहीं मानता, लेकिन उन्होंने निकाला, राम केली में मिले और वाराणसी में दीक्षा मिली चैतन्य महाप्रभु जी से और फिर वृंदावन। इस कारण यावन निश्चितम, दोनों भाइयों ने निश्चय कर लिया कि अब मजा नहीं इस मुसलमान के राज्य में रहना, मजा मजा नहीं, ये न भजन में न पूजा में कहीं भी रहने नहीं देता, चलो यहां से। वैष्णवाचार सेवा सदा सौख्यदा चिंत चित्रे त्रिवृंदावने राजते रूप। गोस्वामिनं भक्तवर्यं भजे रूप गोस्वामिनं भक्तवर्यं भजे। तत्व में आगे वृंदावन में आगे यहाँ आगे यही इनका हरिओम, तो ये वृंदावन इसलिए है। आठवा इनकी वाणी कैसी, भारते रूप वाणी सदा सौख्यदा। अगर आप वाणी किसी की चाहती है अक्षरादि क्रम से, शास्त्र से, रस से, उनके अलंकारों से, वर्णन से, तो भारते रूप वाणी सदा सौख्यदा सर्व विश्वे सदा मोक्षदा ज्ञानदम। ये ज्ञान देने वाली, अरे ये रूप वाणी जो होगी इसका जो अध्ययन करेगा वो ज्ञानदम, रूप ने हमको ज्ञान दिया है। कृष्ण रूपम भजे गौर रूपम भजे, दोनों एक ही रूप तो अभी आप लोगों ने बताया, तो वो भी मैंने लिख दी लाइन, कृष्ण रूपम भजे गौर रूपम भजे रूप गोस्वामिनं भक्तवर्यं भजे। मुख मस्ति च वक्तव्यम शत हस्ता हरित की, भगवान ने मुंह दिया है तो सौ हाथ की हर्र होती है खूब बगो, और माइक मिल जाए तो बड़े भाग्य माई मैंने माइक आज पा है, ये माइक बड़े भाग्य से मिलता है जो हमें बैठता है ब्रह्म, और इसका नाम है माइक, तो बहुत दिनों में मिला था तो इसलिए हमने भी टाइम लगा लिया। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान जय 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 जय। महाराज क्षमा करना टाइम दे जय जय।
आप अपने उस गुण को चिपटाए बैठे हो, आज सभा में कहता हूँ आपका ग्रंथ प्रकाशित होने योग्य से प्रकाश करें। नहीं ये उत्पटन लिखा हुआ पढ़ लेते नहीं है,
आप लोगों ने अभी विद्वान श्री चतुर्वेदी जी का ये भाषण सुना, उन्होंने रूप गोस्वामी के काव्य का बहुत ही सुंदर रूप से विश्लेषण किया, और अंत में अपनी रचना के द्वारा रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट वर्णन किया। इन्होंने बतलाया कि रूप गोस्वामी जी के जो गोविंद स्तोत्र इत्यादि हैं उनका अर्थ करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी संभव नहीं है, वो तो केवल रूप गोस्वामी की जिन पर कृपा होगी वही समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। उनका भी उन्होंने वर्णन किया, उनके काव्य में कैसा रस है, कैसा तत्व है, इस सब का सुंदर विवेचन किया। आज यहीं पर सभा विसर्जन की जाती है, कल फिर 5 बजे से सभा आरंभ होगी और फिर बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें आएंगे, रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। एक महामंत्र
वो आपने जो कविता लिखी
है
वो दे दीजिए, भागवत पत्रिका में छपे,
इनका स्टोक चला जाएगा उसमें।